میں سے اکثر لوگ ایک بات میں بہت کثرت کے ساتھ غلطی کرتے ہیں اور اکثر مایوس بھی ہو جاتے ہیں اس بات کو لے کے کہ کچھ لوگ ماشاء اللہ تقوی سے چل رہے ہوتے ہیں، سارے ان کے معاملات درست ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اچانک ون بائی ون ان کے معاملات خراب ہونے لگتے ہیں اور ایک ایک کر کے سارے گناہ ہونے لگتے ہیں، اور پھر تقوی جو ہوتا ہے اس میں بالکل نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے، تو مایوس ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ یار اس وقت میرے معاملات چھوڑ گیا، قرآن پاک نہیں پڑھ پا رہا، ذکر اللہ نہیں کر پا رہا، وہ میرے معاملات نہیں رہے جو ماضی میں ہوتے تھے۔ تو جب آدمی مایوس ہو جاتا ہے کسی چیز سے تو پھر شیطان پکڑ لیتا ہے، اور جب شیطان پکڑ لیتا ہے تو پھر وہ پورے ہی اٹھا کے پھینک دیتا ہے۔ تو یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے اللہ سے مایوس کرنا۔ بھائی ہم جو مسلمان ہیں وہ ہم لوگ انبیاء کرام میں سے نہیں ہیں، صرف انبیاء کرام کی ذات ایسی ہوتی ہے کہ جو معصوم ہوتی ہے، جن سے خطا نہیں ہوتی، جن سے گناہ کا شرور نہیں ہوتا، وہ اللہ کی اسپیشل فورس کہلاتی ہے۔ تو انبیاء کرام کے علاوہ بڑے سے بڑا کوئی اللہ کا ولی بھی اگر ہے، قطب ابدال غوث بھی ہے، تو وہ معصوم نہیں ہوتا، پر خطا ہوتے، ان سے بھی خطائیں ہو جاتی ہیں، لیکن اکثر یہی ہوتا ہے کہ وہ گناہوں سے محفوظ کر دیے جاتے ہیں، معصوم نہیں ہوتے۔ محفوظ کر دینا کیا ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، کیا گناہوں سے اللہ پاک حفاظت کرتے ہیں ان کی بہت حد تک، لیکن اگر کوئی ان سے خطا ہو جاتی ہے تو وہ ٹوٹے ہوئے رابطے کو رو رو کے توبہ استغفار کے ذریعے دوبارہ بحال کر لیتے ہیں، تو مایوس نہیں ہوتے وہ۔ تو اب اس کا حل کیا ہے، جیسے کسی کے معاملات نہیں رہے، بد نظری ہو رہی ہے، موبائل پہ وہ گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں، یا ساری چیز اس کی ختم ہو گئی تقوی والی، تو بھائی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، احساس پیدا کر لے کہ مجھ سے خطائیں ہو رہی ہیں، اللہ تو مجھے معاف فرما۔ اب اس کا علاج کیا ہے، ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے، منقول اللہ کی مشیما فرمائے، ہمارے پیارے آقا دو جہاں صدر اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دن میں کسی سے 70 بار کوئی گناہ ہو رہا ہے، 70 بار مثال کے طور پہ بشری تقاضے کی وجہ سے کوئی بھی گناہ، اور وہ 70 بار توبہ کر رہا ہے سچے دل سے، تو 70 بار اس کی توبہ قبول ہے۔ اب بتائیے اس سے زیادہ کوئی آسان طریقہ ہوگا، تو ایسا شخص بھی متقی پرہیزگار اللہ والا کہلائے گا۔ لیکن شرط کیا ہے، حضرت والا رحمۃ اللہ زمان میں اس کی تشریح میں فرمایا کرتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 70 بار کیا ہے تو مثال دینے کو، اگر 1000 دفعہ بھی گناہ ہو رہا اور 1000 دفعہ توبہ کر رہے دن میں، تو 1000 بار اس کی توبہ قبول ہے۔ شرط یہ ہے، شرط کیا ہے، جس وقت توبہ کر رہا ہوں اس وقت شکست توبہ کا ارادہ رہو کہ میں توبہ توڑ دوں گا، وہ الگ بات ہے، پھر بےچارہ نفس و شیطان کے شکنجے میں آئے اور وہ پھر اس سے غلط کام ہو جائے بشری تقاضوں کی وجہ سے، لیکن جس وقت توبہ کر رہا ہے اس وقت دل میں اللہ سے تو کوئی بات نہیں چھپی ہوئی، اس وقت اللہ ہمارے دل کی کیفیات کو دیکھ لیں کہ یہ شخص واقعی مجھ سے سچی توبہ کر رہا ہے، تو اللہ معاف کر دیں گے۔ تو 1000 دفعہ بھی توبہ ہوگی تو معاف ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ تو فائدہ کیا ہوا، میں توبہ اس طرح کرتا رہوں، تقوی تو نصیب ہی نہیں ہو رہا، تو میں اسی طرح زندگی گزاروں گا، یہ تو توبہ کرتا رہوں اور روتا رہوں گناہوں پہ، گناہ چھوٹ نہیں رہے میرے، تو بھائی یہ بھی شیطانی ایک چیز ہے۔ اصل میں ہم نہ چیمپئن ہیں بھائی، نہ سپر مین ہیں، نہ ہمارے اختیار میں کچھ ہے، نہ ہم پاورفل ہیں، نہ ہم اللہ سے زبردستی کوئی چیز حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت والا رحمتہ اللہ ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ زور سے نہیں، آہوزاری سے ملے گا، زور سے نہیں ملے گا، بڑھ تکڑ سے، آہوزاری سے، رونے گانے سے۔ توبہ گانا بھائی والا نہیں، محاورے میں کہتے ہیں رونا گانا، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہو گانا شروع کر دے، تو توبہ استغفار آدمی کرتا رہا، اب یہ سوچے کہ جی توبہ سے فائدہ کیا ہو رہا ہے، گناہ تو چھوٹ نہیں رہا۔ تو اس کے اوپر راز کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی کسی گناہ کی جان کو آ جاتا ہے، پیچھے پڑ جاتا ہے، بار بار توبہ کر رہا ہے، تو پھر وہ گناہ چھوٹ جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے۔ حضرت والا رحمت ہمارے مرشد عارف اللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ ارشاد فرما دے رہے، جو گناہ سے بچنے میں جان لڑا دے گا وہ جان چھڑا لے گا۔ الفاظ کیا ہے، جو گناہ سے بچنے میں جان لڑا دے گا وہ جان چھڑا لے گا۔ تو ہم جان کی بازی لگاتے ہیں، ہم در پہ ہوتے ہی نہیں کمبخت، یہ بلا، یہ پلیدگی، گند، یہ خریش، ملون، لانتی، کمبخت چیز، گناہ، یہ کیوں مجھ سے لپٹ گئی؟ یہ لانتی کام، گناہ کا کوئی بھی آدمی کو لت لگ جائے، چھوٹ کیوں نہیں رہا؟ ہمیں غصہ ہی نہیں آتا، ہمیں ندامت ہی نہیں ہوتی. تو احساس اور ندامت ہی نہیں ہے تو توبہ کہاں سے ہو جائے گی؟ اور توبہ اگر کی بھی تو ڈھیلی ڈھالی توبہ ہوتی ہے. ذرا سا اگر احساس ہوا بھی تو پھر کیا ہماری توبہ قبول ہوگی اور کیا تقویٰ ملے گا؟ تو احساس ہی نہیں ہے. ہم لوگ عادی مجرم بنے رہتے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں، بدنظری کرتے رہتے ہیں، جھوٹ بولتے رہتے ہیں، غیبتیں کرتے رہتے ہیں، ننگی فلمیں دیکھتے رہتے ہیں، عورتوں کے ساتھ بدنظری کرتے رہتے ہیں، فجر کی نماز قضا کرتے رہتے ہیں، غیبتیں کرتے رہتے ہیں. اسی طرح کتنے گناہ ایسے ہوتے ہیں، کرتے رہتے ہیں. کتنے لوگ رو رہے ہیں؟ کوئی رو رہا ہے توبہ استغفار میں؟ یہ تو اللہ کو، اللہ دیکھ رہے ہیں سب کے حال کو. کوئی پریشانی آ جائے تو ہم دیکھیں کیسا رجوع کرتے ہیں. بھائی پریشانی بھی رجوع کریں، لیکن پریشانیاں جو آئی ہیں وہ تو گناہوں کی وجہ سے تو آئی ہیں. تو بنیاد عقل مندی کا تقاضا ہے کہ ان سوراخوں کو بند کریں جہاں سے پریشانیاں آ رہی ہیں. وہ نافرمانی کے سوراخ ہوتے ہیں، گناہوں کے سوراخ ہوتے ہیں. یہ پریشانیاں تو آتی ہیں تو بطور علامات کے ظاہر کرتے ہیں اللہ پاک، ہماری اصلاح کے لیے. تو پریشانی اللہ سے توبہ استغفار کرنے سے ہٹا دی جاتی ہیں. تو ابھی جو گناہ کے جو معاملات ہیں، جیسے کسی کی فجر کی نماز قضا ہو رہی ہے نہیں پڑھ پا رہا، یا بدنظری نہیں چھوٹ رہی، تو وہی بات اکثر بتاتا رہتا ہوں، جس درجے کا احساس ہوگا، جس درجے کی ندامت شرمساری ہوگی، جس درجے کی گناہ کی شدت کا احساس ہوگا کہ مجھ سے زلادت کمینگی ہو کیوں رہی ہے، تو پھر جس حساب کا اس جس درجے کی اس کو ندامت ہوگی اور احساس ہوگا تو پھر اس درجے کی توبہ ہوگی، اور جس شدید درجے کی، اعلیٰ درجے کی توبہ ہوگی تو اس درجے کی اللہ کی طرف سے توفیقات کی پھر بارش ہوگی. تم روٹے ہم چھوٹے. تو جب ہمیں پرواہ نہیں اپنے گناہ چھڑوانے کی تو اللہ کو کیا پڑے گی؟ اللہ کو کیا پڑے گی بھائی؟ تو ہمیں اپنی ہدایت کی، تقوی کی خود فکر کرنی ہے. تو ہم لوگ بیت بھی کتنے لوگ ہوتے ہیں جو ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اور گناہ کرتے رہتے ہیں، اور شیخ سے صرف تعلق جو ہوتا ہے اکثر لوگ یہی ہوتا ہے وہ پریشانی دور ہو جائے، پیسے آ جائے، کاروبار چل جائے، نوکری مل جائے، فلاں 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 فلا. یہ بھی مبارک ہے، لیکن یہ چیزیں اگر شیخ کے ذریعے مل بھی گئی تو موت کے ساتھ سب ختم. لیکن اگر شیخ کے ذریعے سے اگر اللہ پاک نے تقویٰ دے دیا، اللہ کی ذات مل گئی، تو پھر وہ کفن کے ساتھ جائے گا. اصل تو صحبت کا مزہ تو اس وقت دیکھیے گا، اس وقت صحبت کے مزے دیکھیے گا. شیخ کے ذریعے دنیاوی چیزیں مل بھی جائیں لیکن موت کے ساتھ ہی تو ساری چیزیں نہیں رہ جائیں گی بھائی. پریشانیاں تو سخت ہیں، کہیں جب تک ہمارے جسم کے اندر روح ہے، روح نکلی، ساری پریشانیاں ختم، ساری پریشانیاں ختم. تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ پریشانیوں کے لیے دعا بھی کرا وہ بھی ختم، اور اس سے بڑھ کے شیخ کے پاس آنے کا، اصلاح کرانے کا، بیت ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں شیخ سے کوئی بات چھپاؤں گا نہیں جو میں چھپ چھپ کے گناہ کرتا ہوں، چھپاؤں گا نہیں، بتاؤں گا شیخ کو. شان بنانے کی نہیں کے پاس، شیخ کے پاس نہ شان بنا. بہت سے لوگ اپنی ناک کو اونچی رکھنے کی نہیں ہے کہ میری ٹور اونچی رہے، تو بتاتے ہی نہیں کہ یار وہ شیخ کیا سوچیں گے میرے بارے میں، یار میں ایسا کرتا ہوں. تو بھائی ٹھیک ہے، نہ بتاؤ شیخ کو، عزت کی نہیں جا رہے ہو شیخ کے پاس، پتہ ہے نا؟ رب العزت کی لیے تو نہیں جا رہے، عزت کی نہیں جا رہے ہو. رب العزت کی نہیں جاتے تو شرم نہیں کرتے، بتا دیتے سب سچ سچ. اب کیا ہوگا؟ اب شیخ سے بتا نہیں رہے، توبہ کر نہیں رہے، گناہ چھوڑ نہیں رہے، عادتاً سرپٹ گھوڑا جو ہے دوڑائے جا رہے ہیں گناہوں کی سڑک کے اوپر. پھر ہوگا کیا؟ پھر اصلاح ہوگی. اب اصلاح بھی ہوگی، شیخ کو نہیں پتا، شیخ نے اصلاح نہیں کی، کوئی بات نہیں. اب پھر ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے اصلاح ہوگی. اب کیا ہوگا کہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت کی طرف سے اصلاح ہوگی، اور جب اللہ کی طرف سے اصلاح ہوتی ہے تو بعض دفعہ چیخیں نکل جاتی ہیں. پھر کوئی بلا آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ایسی بس اللہ حفاظت فرمائے. اللہ کا پھر جلال غضب اترتا ہے پھر اللہ کا. تو بتاتا رہتا ہوں اصلاح کے تین طریقے ہوتے ہیں. اصلاح کے کیا مطلب؟ گناہوں سے پاک ہونے کے. سب سے آسان، مزیدار، لذیذ، بغیر ٹینشن والا کیا بھائی طریقہ ہے؟ کہ آدمی کسی بھی گناہ میں عادتاً مبتلا نہ رہے. الفاظ غور سے سنیے گا، عادتاً. عادتاً کا مطلب ہوتا ہے تین دن سے زیادہ کوئی بھی گناہ ہماری جان سے لپٹا ہوا نہیں رہنا چاہیے، وہ پھر خطرے کی گھنٹی بجتی ہے. پھر تین دن تک مشائخ فرماتے ہیں دیکھ لیا کرو اپنے قوت ارادی سے، توبہ استغفار سے اگر نفس کنٹرول میں آ گئے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تین دن کے بعد کوشش اور توبہ کے بعد بھی وہ دعا، وہ گناہ ہماری زندگی سے نہیں نکل رہا، کنٹرول نہیں ہو پا رہا نفس، پھر شیخ کو اطلاع دے آدمی، شیخ کو اطلاع دے فوراً. देर ना करे, तो सबसे आसान क्या तरीका हो गया भाई, कि खुद कोशिश करे। नहीं, अगर मसला हल हो रहा तो शेख को बताए, इसलाह करवाए, शेख की दुआएं होंगी, तवज्जोहात होती हैं, और शेख कुछ तरीके भी बताएगा जिससे अल्लाह पाक अक्सर फजल ही फरमा देते हैं। तो ये आसान तरीका है गुनाह से जान छुड़वाने का। गुनाह निकलने का उसकी जिंदगी से मतलब क्या है, एक गुनाह गुनाह कबीरा अगर निकलता है तो तखवे का एक बड़ा जखीरा उसको हासिल होगा, बड़ी बड़ी बलाओं मुसीबतों से बच गया। तो ये आसान तरीका है। दूसरा तरीका क्या है भाई, इसलाह का, गुनाहों से पाक होने का। ना खुद तौबा इस्तग़फ़ार कर रहा है, आदतन गुनाहों में लगा रहता है, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल एक जमाना हो गया गलत काम करते हुए, गुनाह कबीरा करते हुए, ना खुद तौबा इस्तग़फ़ार कर रहा है, ना शेख से इसलाह करवा रहा, बता ही नहीं रहा किसी को, चुप 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 खामोश है, बस बताता नहीं, अंदर ही अंदर वो हराम हो कशीद करता रहता। फिर क्या होगा भाई, फिर अल्लाह पाक देख रहे हैं कि ये गुनाहों का बोझ बढ़ रहा है, तौबा कर नहीं रहा, इसलाह करा नहीं रहा, सोबत में जा नहीं रहा, अब कैसे अल्लाह पाक बैलेंस करेंगे, कैसे बैलेंस करेंगे, कैसे गुनाह कम करेंगे। फिर अल्लाह पाक को परेशानी को बड़ा डाल देते हैं, कोई मुसीबत डाल देते हैं किसी भी शक्ल में, तो उस पर सबर, उस तकलीफ के ऊपर सबर कर करके फिर वो गुनाहों से पाक होने लगता है। तो भाई ये खतरनाक तरीका है, अजियत वाला तरीका है। दूसरा, इस तरह से गुनाहों से पाक होता है। तीसरा तरीका क्या होता है गुनाहों से पाक होने का, अब ये दूसरा जो बताया अभी, इस जमन में कुरान पाक की आयत है कि हम इन लोगों को कयामत वाले दिन बड़े आजाब से पहले दुनिया में छोटे आजाब का मजा जरूर चखाएंगे। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसकी तशरीह में फरमाते हैं कि बड़ा आजाब तो कयामत वाले दिन वो तो जब आएगा आएगा, लेकिन यहाँ जो अल्लाह फरमा रहे हैं बड़े अजाब से पहले दुनिया में छोटे अजाब उन पर नाजिल करेंगे, छोटे अजाब से गुजारेंगे। तो हजरत अब्दुल्लाह ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि यहाँ छोटे अजाब से दुनिया में मुराद बलाएं परेशानियां मुसीबतों का जिक्र किया जा रहा है कि गुनाहों की वजह से फिर ये आएंगे। जो आखिरत में जो बड़ा अजाब आएगा वो अलग है, लेकिन दुनिया में अल्लाह ये बलाएं भेजेंगे बंदे के साथ, तो अगर उसने तकवा अख्तियार नहीं किया, गुनाहों को नहीं छोड़ा, तो इस तरह से फिर बला मुसीबत की भी वजह वही बात घूम फिर कहती है, अल्लाह की दुश्मनी नहीं है। अल्लाह ने बहुत अरसे तक देखा नहीं सही हुए, फिर अल्लाह ने सेकंड डिग्री इस्तेमाल कर दिया, तो उसके बाद क्या वो परेशानी आ रही है। अब इसके पीछे भी क्या राज छुपा हुआ है कि आदमी को एहसास हो, तकलीफ हो, गम हो, डिप्रेशन में आए, थोड़ा टेंशन में आए, तो मकसद क्या है, अल्लाह की तरफ रुजू करे, तौबा करे, तकवा अख्तियार करे, तो फिर क्या फरमा रहे हैं अल्लाह, मैं परेशानी दूर कर दूंगा। अब बीवी मोहलत दे रहे हैं, अब पता क्या चला, ना पहला स्टेज क्लियर हुआ, ना दूसरे तस्किए का तरीका मामला हुए, अल्लाह ने दुनिया में परेशानी भेज दी, तब भी उसने इसलाह नहीं कराई अपनी, तो भी तब भी उसने तौबा नहीं की, क्योंकि हमारे बहुत बड़ा एक कसीर तबका लोगों का ऐसा भी है कि बड़ी बड़ी बलाएं आ जाएंगी, मुसीबत आ जाएगी, परेशानी आ जाएंगी, उनको कितने अल्लाह रसूल की बात कह दो, कितने ही गुनाहों को छोड़ने की बात कर लो, मर जाएंगे लेकिन वो गुनाहों को छोड़ने पर तैयार नहीं होते। ये एक बड़ा तबका है हमारे, मर जाएंगे लेकिन अल्लाह की तरफ नहीं आएंगे। तो पता चला मर गए, गालिब ने कहा था ना, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएं, मर के भी चैन ना पाया तो कहां जाएं। तो अब मर गया बंदा, मिसाल के तौर पे कोई शख्स मरता है गुनाहगार, दुनिया भी अल्लाह ने उस पर परेशानियां भेजी कि तकवे की तरह है, लेकिन नहीं आ रहा बेचारा, मर गया वो, तो फिर अब उस सूरत में तस्किया फिर भी जारी है, तस्किया दुनिया भी उतरा लेकिन अल्लाह का मकसद पूरा नहीं हुआ, उसने तौबा इस्तग़फ़ार नहीं करी, तकवे की तरफ नहीं आया, तो अब जान निकलने की तकलीफ उसे गुनाहों से पाक करेगी, तस्किया करेगी। ये स्टेजेस बताए जा रहे हैं तस्किये के, गुनाहों से पाक होने के। एक बार हजरत अली करमल्लाह वजह कहीं गए किसी मकबरे पे, किसी कब्रिस्तान, और उनके साथ उनके गुलाम भी थे, हजरत कुमैल रहमतुल्लाह अलैह वो भी थे और भी कुछ लोग थे। तो आपने ये फवैले अमाल में है ये वाक्य इनका, तो इन्होंने इरशाद फरमाया हजरत अली करमल्लाह वजह ने कि ए कबर के मुर्दो हुकुम भी इज़्निल्लाह, अल्लाह के हुकुम से उठ के बाहर आओ। तो देखा एक कुछ लोग कबर से बाहर आ गए, उसमें बाशरत है और कसरत सजदा का पेशानी पे निशान था, दाढ़ी भी थी। तो पूछा हजरत अली करमल्लाह वजह ने, कुछ अपनी सुनाओ, कुछ हाल दो। तो उन्होंने कहा या अमीरुल मोमिनीन, आप बताइए हमारे बाद हमारा क्या हुआ हमारे घर बार का। तो बड़ी पुर जलाल और जज्बाती बयान कर दिया, मुख्तसर सी जामे बात फरमाई, क्या उनका अंदाज होगा। उन्होंने फरमाया कि तुम जो अपनी बीवियां छोड़कर आए थे और उन्हें दूसरे खसम कर लिए और उनसे अब दूसरे बच्चे पैदा हो गए और तुम्हारी जायदादों पर इमलाक पर कब्जा हो चुका है, तुम्हारा जो कैश इन हैंड जो कुछ भी तुम चीजें छोड़कर आए थे सब दूसरों का कब्जा हो चुका है, कोई तुम्हें याद करने वाला नहीं है, सब अपनी अपनी जिंदगियों में खुश है, सब अपनी अपनी जिंदगियों में खुश हैं। अब तुम सुनाओ तुम्हारा क्या हाल है। तो एक शख्स कहता है कि या अमीरुल मोमिनीन, 50 साल पहले मेरा इंतकाल हुआ था, लेकिन मौत की तकलीफ अभी तक अपने रगो रेशे में महसूस कर रहा हूँ। 50 साल पहले इंतकाल हुआ था, ये जान करने की तकलीफ ही क्यों दिया ये सबको नहीं है। दूसरी एक हदीस शरीफ में हमारे प्यारे आका दो जान हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बंदा मोमिन की जब रूह निकलती है तो इतने आराम से निकलती है जैसे आटे में से बाल, और एक हदीस शरीफ में ऐसे जो जिंदा बकरी की खाल खींचती है, जिंदा बकरी की जिबा करके नहीं, जिंदा बकरी खड़ी और हम खाल उसकी उधेड़ के रख के पूरी उसको उतार दें खाल को, तो उसकी क्या तकलीफ होगी उस बकरी की, फरमाए इससे भी कहीं ज्यादा। हजरत अली करमल्लाह जो फरमाते हैं 1000 बार तलवार के किसी के जिस्म में अंदर बाहर दाखिल कर दी है, यानी किसी तलवार के 1000 बार किसी को मारे हैं जिस्म पे, वो तकलीफ होती है मौत की। और एक हदीस शरीफ में उसने ये भी फरमाया, मलमल का कपड़ा किसी कांटेदार टहनी के ऊपर डाल दिया जाए और फिर उसके बाद एक झटके से उस कपड़े को खींच दिया जाए तो चीथड़े हो जाएंगे, उसके सुराख हो जाएंगे, फट जाएगा कांटों से, ये है मौत की तकलीफ। लेकिन वही बात, अल्लाह ने हर चीज अमाल से जोड़ी, दूसरी तरफ बंदा मोमिन की ऐसे निकलती है कि जैसे आटे में से बाल, तो ये तकलीफ क्यों दे रहे हैं अल्लाह पाक मौत की तकलीफ की, गुनाहगार लोगों को तस्की के लिए, पाक करने के लिए, गुनाहों से पाक होने के लिए, क्योंकि इन्होंने दुनिया में अपना पाक होने का मिशन पूरा नहीं किया था, अधूरा छोड़ा, तो भाई पाक लाजमी होना है, ये अल्लाह के कानून के मुताबिक मामला बताया जा रहे हैं। भाई अल्लाह की रहमत का जो मामला है वो अलग है कि अल्लाह जिसको चाहे पकड़े, जिसको चाहे माफ कर दे, अल्लाह मजबूर नहीं है अजाब देने पे, अल्लाह चाहे तो एक सेकंड में सबको बख्श के जन्नत नहीं भेज दे, ये रहमत के वो मामला है। लेकिन हजरत वाला रहमतुल्लाह इरशाद फरमा देते रिस्क मतलब, रिस्क मतलब हैदराबाद भी जाते हो और 2-4 घंटे की ड्राइव पे कहीं जाते हो तो गाड़ी में पूरा पेट्रोल डलवाते हो, 2-4 लीटर को पेट्रोल डलवाए और बोले मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, हंसेंगे भाई गाड़ी में ये 4 लीटर पेट्रोल से क्या होगा, बीच में बंद हो जाएगी गाड़ी, तो सफर जितना लंबा हो हिसाब से ज्यादा आप रखे ना, खाने पीने का सामान है, पेट्रोल पूरा डलवाए, कितना लंबा सफर है, तो हर आदमी कहेगा कि अल्लाह ने अकल नहीं दी आपको, तवक्कुल की तारीफ थोड़ी, तवक्कुल की तो ये तारीफ है कि अस्बाब इख्तियार करो फिर अल्लाह पे भरोसा करो, ये तवक्कुल है, ये थोड़ी है कि आपने गाड़ी लिए 2 लीटर पेट्रोल और हैदराबाद चलेगा कि अल्लाह के पर मैं तवक्कुल करके जाऊं, लोग इसी तरह की बातें करते हैं ना, और बातें भी सही है। तो भाई जब दुनिया के मामले में भी हम तवक्कुल करते हैं और फिर कहते भाई राजक तो अल्लाह, लेकिन दुकान तो खोलनी है, नौकरी तो करनी है, कारोबार तो करना है, तवक्कुल का मतलब ये थोड़ी है कि हाथ पे हाथ रख के बड़े कुछ ना करो अल्लाह आसमान से बरसा देगा, सबब इख्तियार करना है, ये तवक्कुल है, फिर उसके बाद अल्लाह अपना फजल फरमाते हैं। तो जब दुनिया के मामले में तो बड़ी अकले हम दे दें, लेकिन जब आखिरत की बात आती है, कबर हशर मौत की और जनाजों की और कबर की मैयतों की, तो कहते हैं अल्लाह बड़ा गफूर रहीम, अल्लाह सब माफ कर देगा। अरे भाई तो दुनिया के मामले में तो बोलो ना, अल्लाह राजी है, मैं नहीं नौकरी करूंगा, कारोबार नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, अल्लाह बहुत राजी है, घर बैठे दे देगा, तो वहां तुम सबब इख्तियार कर रहे हैं, अब इख्तियार कर रहे हैं दुनियावी मामलात में, लेकिन अल्लाह के मामलात में हमने तवक्कुल को ऐसा मजबूत पकड़ा है कि कोई अमल ही नहीं करते, सबब इख्तियार नहीं कर रहे, सब रहमत के ऊपर सारे मामलात चल रहे हैं, क्या नौज़ुबिल्लाह पर वही आ गई है कि अल्लाह ने कह दिया कि तुम्हारे साथ जो है उससे रहमत के मामलात होंगे, चाहे तुम कितने ही गुनाहगार होगे मैं तुम्हें बख्श दूंगा। अरे भाई वो तो अशरे मुबशरा थे 10 सहाबा कराम, और जो जिनको दुनिया में जीते जी जन्नती होने का सर्टिफिकेट मिल गया था, उनकी हालत होती थी कि हर वक्त कांपते रहते थे, रोते रहते थे कि क्या होगा महाराज, सनद जारी हो चुकी है, उसके बावजूद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जो थे, वो जो अशरा मुबशरा में जब इनका भी नाम था तो ये मुख्तलिफ सहाबा कराम से पूछते थे कि मैं खुदा ना खास्ता कोई बदगुमानी की वजह से नहीं पूछता था, उमर फारूक रजी अल्लाह दूसरे सहाबा कराम से पूछते थे कि वाकई मेरा अशरा मुबशरा में नाम है जो आया है ना, बदगुमानी रख रहा, लेकिन मैं दिल की तसल्ली की नहीं कह रहा हूँ, डर है मुझे कि वाकई ये मुझे टेंशन है कयामत की, कबर की, हशर की, कि वाकई मेरा नाम भी अल्लाह ने उसमें डाला हुआ है 10 लोगों में, तो ये इतनी उनको फिक्र थी। तो हजरत वाला रहमतुल्लाह ने एक दफा फरमाया मुझे इश्काल पेश हुआ जब उनको ये खबर दे दी गई तो वो क्यों पूछ रहे थे, तो ये सवाल हजरत ने अपने शेख हजरत मौलाना अब्दुल गनी फुलपुरी साहब रहमतुल्लाह से किया, तो क्या उन्होंने माशाल्लाह इल्हामी जवाब दिया, फरमाया जो इंदल्ला मकबूल होता है वो हमेशा अपने आप को खताकार और डरावा ही अपने आप को महसूस करता है, ये उसके अंदर ला मकबूल होने की अलामत है। जो सब कुछ होके भी अशरम वशरम होते भी दिल में धड़का है, खौफ है, ये अंदरला मकबूल होने की अलामत होती है। इसमें बड़ी बारीकी है इन मामलात में। तो तस्किए की जो बात हो रही थी अभी, अगर जो लोग तस्किए नहीं कराते तो फिर मौत की तकलीफ से फिर उसका तस्किया होता है और गुनाहों से पाक होता है। तो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, गुनाह उनके कम होते हैं, दुनिया में तकलीफ उठा चुके होते हैं बेचारे, थोड़ा बहुत मामला तो उनके रहते हैं, तो मौत की तकलीफ से वो पाक हो जाते हैं, फिर उनको अजाबे कब्र नहीं दिया जाता, फिर जहन्नम में नहीं जलाया जाता, फिर वो मौत की तकलीफ के बाद सीधे उनका जन्नत में दाखिल हो जाता है। बस कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मौत की तकलीफ अगर अलग दी जाती है, अजाबे कब्र फिर अलग होगा। क्यों? वही बात, हर एक का अलग मामला, हर एक के अलग मामलात होते हैं। इसी तरह फिर बरज़ख़, जन्नत में, जन्नत में जो मुस्तकिल जाना होगा वो तो क़यामत के बाद, हशर जब क़यामत वाक़े होगी उसके बाद अल्लाह फैसला करेंगे तो उस वक्त जाना होगा। लेकिन आलम बरज़ख़ को खोल देते हैं तो जन्नती और जहन्नमी होने की जो कैफियत और मामलात होते हैं वो बरज़ख़ की शक्ल में अल्लाह पाक उनके ऊपर भेजते रहते हैं। तो अब वो लोग जो थे, बाग ऐसे भी सख्त होते हैं कि मौत की तकलीफ भी उठानी पड़ी और अज़ाबे क़ब्र भी फरिश्तों ने दिया, और उसके बाद जब तक क़यामत नहीं आ रही उस वक्त तक किसी न किसी आग में जलते रहेंगे। देखो उनका तस्किया ही नहीं हो रहा, इतने उनके गुनाह थे। फिर उसके बाद फिर हशर में अलग मामला होंगे कि अल्लाह पाक हिसाब किताब करेंगे और फिर उसको अल्लाह कहेंगे इसको पूरा जहन्नम में ही अब डाल दो। फिर तीसरा स्टेप क्या है, अब जहन्नम में डाल दिया, फिर उसके बाद फिर कब तक वो जलेगा वो अल्लाह को मालूम है, अल्लाह के अंदाजे होते हैं मुकर्रर किए हुए। तो भाई किसी का कुछ नहीं पता किस बात पे अल्लाह हमें पकड़े और किस बात पे हमें छोड़े, किस बात पे पकड़ ले किस बात पे छोड़े। तो अल्लाह की रहमत पे भी भरोसा रखे अल्लाह ताला फरमाते थे। तो अकलमंदी का तकाजा ये है कि अल्लाह के कानून का अदब करते हुए उसकी रहमत पे भरोसा रखो। कितना प्यारा जुमला है, रिस्क फ्री। दुनिया में इनको रिस्क फ्री काम करते हैं कोई नहीं करते। किसी को पता चले भाई चीटर है, पैसे लेके भाग जाता है, वो किसी से कारोबार करना चाह रहा हो और उसको पता चल जाए, दस लोग गवाही दे दे तो वो कहेगा नहीं भाई बेवकूफ थोड़ी, दस लोगों ने गवाही दे दी, मैं रिस्क फ्री काम करता हूँ, मैं जानते पूछते हुए कौन मक्खी निकलता है। तो वहाँ अकलमंदी के सारे तकाजे हम पूरे करते हैं। लेकिन तो आखिरत को हमने क्यों इतना आसान समझ लिया कि वहाँ बगैर किसी अमल के सब कुछ ऐसी सेटिंग बनती चली जाएगी, तो ये सोचने वाली बात है। तो ये तस्किया नफ्स का जो तीन तरीके बता दिए, तस्किया नफ्स यानी गुनाहों से पाक होने के, अल्लाह, क्योंकि जन्नत जो है वो पाक लोगों की जगह है, पाक लोग रहेंगे उसमें जन्नत, जन्नत में गंदे पलीत गुनाहों में लिथड़े हुए लोग नहीं है, क्योंकि जन्नत पाक साफ करके पहले जहन्नम की आग, जहन्नम की आग में क्यों जलाया जा रहा है, गुनाहों से पाक किया जा रहा है, समझ में नहीं आती बात। तो भाई अल्लाह ये प्रोसेस नहीं करे, अगर दुनिया में जीते जी खुशहाली में आदमी अपने गुनाहों की इस्लाह करा ले वैसे ही पाक हो गया तो जहन्नम का चैप्टर आएगा ही नहीं। गुनाहों से पाक करने के लिए जहन्नम में डाला जाता है, अज़ाबे क़ब्र गुनाहों से पाक करने के लिए डाला जाता है, जान करने की तकलीफ गुनाहों से पाक करने के लिए डाली जाती है, क्योंकि जीते जी इसने अपना तज़किया नहीं किया, गुनाहों से पाक नहीं हुआ, कोशिश नहीं करी, निदामत तारी नहीं हुई, तौबा नहीं की, इसलाह नहीं करवाया, जो गुनाह में आदि था उसमें लगा रहा, मुस्तकिल लगा रहा, आदतन लगा रहा, लोग टोकते भी रहे तो बुरा मानता रहा, गुस्सा करता रहा, गुनाह छोड़ने पर तैयार नहीं हुआ, नफ्स की तबाह करता रहा, नफ्स और शैतान की, अल्लाह रसूल के अहकाम की धज्जी उड़ाता रहा, फिर उसका यह अज़ाब होता है। क्या कोई मरने वाला इसी तरह जिया करता है, जिसको मरना हो इसी तरह जीने का ढंग होता है, जिया करता है कोई यूं ही मरने वाला, फजर साहब फरमाते हैं जिया करता है क्या कोई यूं ही मरने वाला, जिसको मरना हो उसके ये काम होते हैं। सवाल ये पैदा नहीं है गुनाह क्यों हुआ, सवाल ये नहीं है कि भाई हम सब गुनाहगार हैं, खताएं होती रहती हैं, सवाल ये तौबा क्यों नहीं करी, एहसास क्यों नहीं हुआ, सवाल ये है। गुनाह करने पर अजाब नहीं आता, गुनाह पर पकड़ फौरन नहीं आती, क्योंकि अल्लाह पाक कुरान पाक में खुद फरमा रहे हैं अगर लोगों के गुनाहों के सबब फौरन के फौरन लोगों पकड़ धकड़ शुरू कर दें, अजाब नाजिल कर दें, तो रूह जमीन पर तुम्हें कोई सांस लेने वाला नजर ही ना आए, क्योंकि सारे खताकार हैं, यहाँ गुनाह हुआ यहाँ तक अजाब आए सब खत्म, तो दुनिया का निजाम तो धर्म भरम हो जाएगा। तो अल्लाह फरमा रहे हैं मतलब ये कि मैं मोहलत देता हूँ, मोहलत क्या मतलब कि शायद लौट आए, शायद तौबा कर ले, शायद उसको एहसास हो जाए माँ के पेट से अब तक खिला रहा हूँ पिला रहा हूँ ऐश करा रहा हूँ, शायद शर्म आ जाए इसको, मेरी मोहब्बत इसके दिल में आ जाए, नफ्स और शैतान की मोहब्बत निकल जाए। लेकिन नहीं, 5 साल 10 साल एक जिंदगी गुजार दी, अब है अल्लाह का महबूब प्यारा, है अल्लाह का महबूब प्यारा है गुनाहगार, तो अल्लाह पाक उसको पाक करने के लिए बलाओं से गुजारते हैं, मोहब्बत छुपी हुई। वजह क्या है, 104 बुखार अगर हमें हो जाए, 200, 102, 103 हो जाए तो हम रोने पीटने लगते हैं, चीखने लगते हैं। अल्लाह को पता है इतना नन्ना काका है ये, इससे तो 102 बुखार तो बर्दाश्त होता नहीं है, घर सर पर उठा लेता है। तो ये मौत की तकलीफ, अजाब कबर, जहन्नम की मामला, बरज़ा कबर, हशर के मामला कहाँ से झेलेगा? तो अल्लाह पाक उन बड़ी बलाओं से बचाने के लिए दुनिया में परेशानी और हवादिस भेजते हैं, ताकि मौत से पहले पहले ये रुजुल अल्लाह हो जाए, तकवा अख्तियार कर ले, तौबा इस्तिगफार कर ले, और जब इसको मौत आए तो इस तरह से उठते जैसे एक फूल उठ के जन्नत में चला गया। तो भाई गुनाह हुआ, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आदतन हम गुनाहों में मुब्तला रहते हैं, हमें निदामत कितनी हुई, एहसास कितना हुआ, फिक्र कितनी हुई उसको पलीदगी से पाक होने की। जो मोबाइल देख रहा है कितने लोग मोबाइल पे लगे रहते हैं, कोई छोड़ रहा है मोबाइल, बदनफरी को छोड़ रहा है, साल हो गए, फिर अल्लाह का तकवी निजाम हरकत में आएगा, फिर चीखे निकल जाएंगी। फिर सवाल ये है, गुनाह के ऊपर मसला नहीं है, इंसान है भाई, खताकार है हम सब, मसला वो नहीं है। आदतन किसी हराम काम में उबतलम क्यों रहते हैं, बदनजरी को छोड़ रहा है, भाभी चच्ची मुमानी मामूजाद खालाजाद तायाजाद जितनी भी कजन खवातीन होती हैं, इनसे भाई नजरों की हिफाजत वाजिब है, इनको चाहिए खवातीन पर्दा करें, तमाम खवातीन के ऊपर फर्ज और वाजिब है पर्दा करना, मर्द की नजर होती है और औरत का पर्दा। रिश्तेदारों में जाए तो ये नहीं कि पूरे घर के अंदर घुसता हुआ चला जाए, हाँ भाभी क्या हाल है, चच्ची बुमानी ताई या मामूबाद खालाबाद बहनों के घरों में जा रहे हैं, वहां तक बेडरूम तक जाते हैं, आजकल तो आम माहौल हो चुका है। साली है भाई, बीवी की बहन है, उससे पर्दा करे वो जो को नहीं करे, तुम नजरों की हिफाजत करो, उसके सामने बताओ, बीवी से कह दो भाई अगर वो पर्दा नहीं करती साली अगर किसी की, तो बोल दे अहलिये के जरिए से कि भाई जब मैं बैठा हुआ करूँ उनको मना करो, मुझसे बातचीत ना करें, मेरे सामने ना आके बैठे, या आप उठ के चले जाए भाई, ऐसा ना बुरा माने फिर वो, मतलब तकवा अख्तियार करना पड़े, इससे तकलीफ होगी, इससे तकलीफ होगी, बस इस तकलीफ के ऊपर ही तो सारे वादे अल्लाह के, वही तक लाजल्लो मखरजा, इस तकवा अख्तियार करेगा मुसीबत से निकाल देंगे, कामों में आसानी पैदा करेंगे, उसे गनी करेंगे, उसकी आखरत तो आखरत दुनियावी जिंदगी को भी बालूत मजेदार बना देंगे, उसको आखिर में अपना वली बना देंगे, सारे चैन सुकून राहत तकवे में तो है। ये अल्लाह ने क्या राज रख दिया, तकवे से रहने में तकलीफ है, कड़वाहट का घूट पीना पड़ेगा, तकलीफ उठानी पड़ेगी, गम मिलेगा, थोड़ा सा तकलीफ होगी, लेकिन इंशाल्लाह शानदार इनामात उसका रिजल्ट सामने आएगा। ये अल्लाह वाले क्या करते हैं, अल्लाह वाले जो होते हैं वो खून अरमा तो करते रहते हैं, फिर अल्लाह उनको कितनी उनके मामला करता है, उनका फैज कैसा जारी करता है, कोई उनको आफ़सलम के साथ देखता है, कोई सुनहरी जानियों के साथ देखता है, कोई कुछ देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, दुआएं करते हैं उनकी दुआएं कबूल होती हैं, सिर्फ बताना होता है, मुस्तजाबो दावत बना देते हैं अल्लाह पाक उनको, कसरत से उनकी दुआएं कबूल होती हैं, वो भी तो इसी दौर के हैं, वो कोई आफ़सलम के दौर के थोड़ी, आजकल के जो अल्लाह वाले लोग हैं वो भी इसी दौर के भाई, लेकिन इस दौर में भी रखते हुए भी अल्लाह ने उनको यूनिक क्यों कर दिया, कुरान और हदीस अल्लाह और रसूल और उनके अहकामात क़यामत तक के लिए, वो फॉर द टाइम बीइंग चंद पीरियड के लिए नहीं थे कि आफ़सलम चलेगा सावर कराम चलेगा तो बस खत्म कहानी है, नहीं, अल्लाह की बातों को कोई नहीं बदल सकता, अल्लाह की बातें क़यामत तक की नहीं, जो भी तकवा अख्तियार करेगा इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी क़यामत तक जो लोग भी तकवा अख्तियार करेंगे उनके साथ वही मामला होंगे जो पुराने लोगों के साथ होते थे। देर और खराबी अल्लाह के नहीं है, नऊज़ बिल्लाह, हमारे अंदर से, हमारे अंदर है, हम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते इसलिए वो चीज़ हमें हासिल नहीं होती। एक शख्स आया, उसने कहा या रसूल अल्लाह मैं मुस्तजाब दावत बनना चाहता हूँ, मुस्तजाब दावत कहते हैं जिसकी दुआएं कसरत से कबूल हो हर दुआ, तो आपने ये इरशाद फरमाया तुम तकवा अख्तियार करो, गुनाहों को छोड़ दो, तकवा अख्तियार करो, मुस्तजाब दावत बना दिए जाओगे। तो भाई जिसको मुस्तजाब दावत बनना हो ये अमल करे, तकवा अख्तियार करे। फिर उस शख्स ने दूसरा ही सवाल किया, या रसूल अल्लाह मैं बहुत बड़ा इबादत गुजार बनना चाहता हूँ। भाई ज्यादा बात का क्या मतलब है, ज्यादा कुरान, ज्यादा जिक्र, ज्यादा नवाफिल पढ़ना, नेक अमाल करना, यही है ना ज्यादा इबादत, ज्यादा बड़े इबादत गुजार। लेकिन आपने यही जवाब दिया, गुनाहों को छोड़ दो, तकवा अख्तियार करो, बहुत बड़े इबादत गुजार लिख दिए जाओगे, कि तुमसे बड़ा कोई इबादत गुजार नहीं होगा कोई। नंबर तीन, फिर उस शख्स ने तीसरा सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बहुत बड़ा आलिम बनना चाहता हूँ, कि मुझसे बड़ा कोई आलिम ही ना हो, आलिम इल्म वाला जबरदस्त, मेरे पास इल्म और मारफत मुझे हासिल हो जाए। तो आपने फिर यही इरशाद फरमाया, तकवा अख्तियार करो, गुनाहों को छोड़ दो, बहुत बड़े आलिम बना दिए जाओगे इल्म वाले अल्लाह की तरफ से। तो सवाल तीन अलग अलग, लेकिन जवाब एक ही, तकवा नहीं से तो हमारी मैया मरती है, तकवे से मुसलमानों में हम लोगों की जो पूरे दुनिया में हम जलील हो रहे हैं, पिट रहे हैं, इसी वजह तो यही है, कि नेक अमाल तो हो रहे हैं, हज उम्रे पे देखें माशाल्लाह कितने लोग जा रहे हैं, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन हो रही है, भर भर के लोग उम्रे पे जा रहे हैं, और इसलिए नहीं होती वहां भी औरतों को बदनजरी कर रहे होते हैं अक्सर लोग, वहां भी फोटोग्राफी कर रहे होते हैं मोबाइल के ऊपर, अल्लाह माफ करे शर्म नहीं आती, वहां भी तस्वीरें खींच रहे होते हैं काबा के साथ, खड़े हो गए हाथ उठा लिए एक एक्शन में और फिर दे दिया भाई वाला मेरा फोटो खींचो, और फिर हाथ उठा रहे दुआ की शक्ल में, ये हाजी साहब गए थे हज पे देखो मैं दुआ कर रहा था, तो फिर हराम काम कर रहे हैं और मुताफ के आते में हर हुदूद हरम में गुनाहे कबीरा कर तकाब कर रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं और फिर उसको ड्राइंग रूम में आके लगा रहे हैं, देखो जो हाजी साहब गए थे, ये क्या रियाकारी शोबाजी है, अरे तुम्हें पता है तुम्हारा उम्रा कबूल हुआ भी नहीं हुआ, यहाँ पता नहीं क्या हो गया लोगों को, अल्लाह। इसी तरह रोवे रसूल सल्लम पे लोग जाके तस्वीर कशी, वही तो बात है, गुना ऐसी जिंदगी से चिपते हैं कमबख्त कोई हमें कोई जगह ही याद नहीं रहती, काबतुल्लाह याद नहीं रहता, रोवे रसूल सल्लम की अजमत और अदब का हमें एहसास नहीं है, वहाँ मौसीकी बजती रहती है, वहाँ म्यूजिक ट्यून चलते रहते हैं मोबाइल के ऊपर, लोग जो है वो बिल्कुल मूवीज बनाते रहते हैं रोवे रसूल की सुनहरी जालियों की, और कमेंट्री भी करते रहते हैं कि जी मैं सब यहाँ खड़ा हूँ और पाकिस्तान में लोग सुन रहे हैं, और मैं यहाँ पर सलातो सलाम पेश कर दिया, अब मैं तुम्हारा सलातो सलाम पेश कर रहा हूँ, अरे जालिम रसूल अल्लाह सल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो मेरी लहर पर आया वो हकीकत में ऐसा जैसे जिंदगी में मुझसे कोई आके मुलाकात करे, इसको तो वहाँ दिल ही हाजिर नहीं है, रसूल अल्लाह के पास आया है वो लाखों रुपए खर्च करके, लेकिन वहां भी घर वालों को लेके बैठा हुआ है वो तो, अरे कमबख्त अरे चंदा क्या बोले, इस वक्त तो बाप आ जाओ, ये चीजें कफन में साथ लिपट के जाएंगी हमारे, अगर इसमें भी इखलास नहीं हुआ, इसमें भी अगर मौसीकी गाने तफसीर कशी ये हराम चीजें हुई, औरतों को बदनजरी करी रोवे रसूल पे जाके काबतुल्लाह शरीफ में, तो कफन में क्या लेकर जाएंगे अपने साथ हम लोग, कहीं तो पाक हो जाएं, कहीं तो गुना छोड़े, लेकिन वही बात जिसको आदत नहीं होती अपने शहर में अपने मुल्कों में गुना छोड़ने की, तो फिर वो दुनिया में कहीं पर भी चला जाए वो गंद वहां भी करेगा, वहां भी करेगा, जिसको बवसीर वाला बिचारा जहाँ बैठता है ना उसके मस्से होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं खून आलूद जगह वो करता रहता है, वो मजबूर होता है वो अपनी बीमारी से, तो यही मामला है, अगर जिनको गुनाहों की बवसीर होती है वो कहीं पर भी उनको ले जाओ वो वहीं पर ही गन करेंगे, मजबूर है वो गुनाहों की वजह से, इसलिए फरमाते हैं अल्लाह वाले कि भाई हज फर्ज है तो जाके कर लो फौरन, लेकिन अगर नफली हज करना है या नफली या उमरा अगर करना जा रहे हो चंद दिन किसी अल्लाह वाले की सोबत में रह लो, फिर उसके बाद तुम जाके देखो काबतुल्लाह शरीफ को, फिर देखो तुम्हें क्या नूर नजर आता है, क्या रंग मिलता है, दुनिया बदली भी नजर आएगी। एक मुफ्ती साहब ने मिंबरे रसूल पे वाक्य बताया कि एक मौजन साहब थे मस्जिद नबी के, पुराने वक्तों की बात है, उनका इंतकाल जब हुआ तो उनका खात्मा किस तरह से हुआ, उन्होंने कहा घर वालों से कुरान पाक लेकर आओ, कुरान पाक घर वालों ने उनके हाथ पे रखा और कहा नाउज़ बिल्ला तुम लोग गवा रहना, मैं इस किताब इस कलाम पाक का इंकार करता हूँ जो रसूल अल्लाह पे नाजिल हुआ, नाउज़ बिल्ला। ये एक और इंतकाल हो गया, खात्मा कुफुर पे हुआ, और कहा के मौजन मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, छोटा भाई उनकी जगह तकरर हुआ उनका, तो उनको बड़ा गम रहता था कि मेरे बड़े भाई तो यहाँ रसूल अल्लाह के मस्जिद में मौजन थे और इतना ज्यादा अरसा रहे तो और उनका इतना बुरा अंजाम हुआ मेरे भाई का, रोते थे गम रहता था। एक बार आप सल्लम की ज्यारत हुई छोटे भाई और फिर यही गम पेश कर दिया, रसूल मुझे बड़ा गम है अपने भाई का, ऐसा सुन के साथ हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे भाई के एक गुनाह को अल्लाह ने पकड़ कर ली थी एक गुनाह से, जिसकी वजह से उसका खात्मा इतना बुरा हुआ। वजह ये थी कि यहाँ दुनिया से औरतें आती हैं मस्जिद नबी में, मेरी मस्जिद में, यहाँ पर मस्जिद नबी में, तो तुम्हारा भाई जो था उनको के उनके साथ बदनजरी करता था, बहुत बुरी तरह से उनको घूरता था, इसने मेरा भी अदब नहीं किया, इसने मस्जिद का अदब नहीं किया, हुदूद हरम का अदब नहीं किया, तो फिर अल्लाह का बाग दफा इस तरह से मामला होते कि अल्लाह ने उसका खात्मा और कुफर पे करा दिया। तो ये नजरों की हिफाजत कितने लोग हैं, हमने भी देखा जब वहां पर गए तो वहां तो ऐसे बाज लोग अल्लाह माफ करे बदनजरियां कर रहे थे कि क्या अपने मुल्क में करते होंगे, बस नहीं चल रहा था, खवातीन लड़कियां हैं उनके उनके साथ चलना है साथ साथ, नहीं मैं अरे बहन बहन कह के लगे पड़े, मैं आपका केन उठा लूं, मैं भर दूं पानी, समझ आप क्यों जा रही है, अरे तुम्हारी बहन है, माँ है तुम्हारी, तुम्हें क्या मतलब है, अपने काम से काम रखो, नहीं उनके खुशामद हो रही है, अच्छा आप कहाँ से आई, मैं वहां इसी तरह बातचीत शुरू हो गई, आप कहाँ से आई, मैं वहां से आई, अरे मैं वही तो मैं भी रहता हूँ, अच्छा अब बातचीत शुरू, ये हुदूद हरम में बातें हो रही हैं, लानती काम बदनजरी भी हो रही है और वहां पे सेटिंग हो रही है, क्या क्या बताएं, ज्यादा जबान अल्फाज नहीं साथ दे रहे, क्या क्या बताएंगे, नफ्स की अगर इस्लाह ना हो तो तो आदमी बिल्कुल ही बेहिश हो जाता है, बेगैरत बन जाता है, बेगैरत हो जाता है इंसान। नहीं उसको एहसास होता है काबतुल्लाह सामने, नहीं एहसास होता है रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने, क्योंकि वो खूगर आदि है हराम चीजों का। जबकि उलमा कराम फरमाते हैं, ये भी हदीस शरीफ में आ चुका है कि हुदूद हरम में हर नेकी का सवाब जो है, मिसाल के तौर पर अगर काबतुल्ला शरीफ में दो रकत नफिल पढ़े तो वो एक लाख के सवाब, हमें एक लाख के बराबर सवाब है दो रकत नफिल का। हर एक नेक अमल का सवाब लाखों में जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये नहीं पता, हर गुनाह का वबाल भी एक लाख गुना बढ़ जाता है। और मस्जिद नबी में दो रकत नफिल पढ़े उसका सवाब 50,000 के बराबर है आधा। तो ये वहां के, तो इसी तरह मदीने पाक में अगर कोई हमने गुनाह किया तो उसका बवाल भी 50,000 गुना बढ़ जाएगा। इस तरफ ध्यान नहीं जाता। एक अपने मुल्क में बदनवरी की वो आम गुना मिलेगा, वही बदनवरी बक्को और मदीना में करी फिर उसका बवाल लाखों गुना बढ़ गया, लाखों गुना बढ़ गया। ये लोगों को एहसास ही नहीं। तो सोचना चाहिए भाई कि हम लोग किस रुख पे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, कैसे हालात हमारे दुरुस्त होंगे। पूरी दुनिया में हम जलील हो रहे हैं, पिट रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं। आप सलम ने ये 1400 साल पहले सारी बातें बता दी थी कि मुसलमानों को काफिर घेर के इस तरह से मारेंगे, उनपे उनके ऊपर टूटेंगे और एक दूसरे को इस तरह से दावत देंगे सारे काफिर मिलके, जिस तरह कई दिनों के भूखे लोग एक दूसरे को दस्तरखान पे दावत देते हैं, आइए आइए खाना खाइए, और फिर खाने पे टूटते ना लोग, इस तरह से एक दूसरे को दावत देंगे। हम मुसलमानों के खिलाफ गए, इनको मारो बर्बाद करो। उसकी वजह लुबे लुबाब क्या था, ये फरमाया था अफसल, उनको बहन लग चुका होगा, दुनिया की मोहब्बत, मौत से नफरत, दुनिया की मोहब्बत, नमाज रुबा कुरान बीवी बच्चों से मोहब्बत करना और ये नौकरी करना, ये दुनिया की मोहब्बत नहीं है। दुनिया की मोहब्बत से मुराद नाजायज मोहब्बत है, आसान लफ्जों में गुनाहों में मशगूल रहना, हराम काम करना और मौत से नफरत। जब ये मर्ज पैदा हो जाएगा तो रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फिर जो काफिर जो आज तुमसे डर रहे हैं वो रोब और दबदबा अल्लाह काफिरों के दिलों से निकाल के तुम्हारे दिलों में डाल देगा, फिर तुम इनसे डरोगे, तुम इनसे कांपोगे, फिर तुम दुआओं के लिए हाथ उठाओगे, तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी, फिर तुम इंतजार करना सुर्ख आंधियों का, जल्जलों का, बड़े बड़े अल्लाह के अजाबात का। वजह क्या है, गुनाह गुनाह गुनाह, ये गुनाह ही तो थे कि ये बनी इसराइल के लोगों को, यहूदियों को अल्लाह ने सूअर और बंदर बनाया था, वजह क्या थी, गुनाह तो थे। याद और समूद के ऊपर चिंगाड़ आ रही है और बड़े बड़े तूफान आ रहे हैं, उठा के पटक दिया, अजाब नाजिल कर दिया अल्लाह ने, अल्लाह फरमा रहे मैंने इसी ताकतवर कौम उसके बाद दोबारा रूई जमीन पे नहीं पैदा करी, वजह क्या थी, गुनाह तो थे। पूरा कुरान पाक भरा हुआ इस मजमून के हिसाब से, वो लोग काफिर थे, वो कुफर पे अड़े हुए थे, आज हम गुनाहों पे अड़े हुए, वो कुफर पे अड़े हुए थे, आज हम लोग नमाज कुरान तो पढ़ते हैं, मुबारक है अल्लाह की मोहब्बत भी, जब बैठे हुए अगर मोहब्बत नहीं होती तो हम क्यों आते अल्लाह के फिक्र में, लेकिन वो काफिर कुफर पे अड़े हुए थे, हम गुनाहों पे अड़े हैं, गुनाह छोड़ने पे तैयार नहीं है, जिसकी वजह से मसाइल हल नहीं हो रहे, अल्लाह की तरफ से अजाबात बढ़ते चले जा रहे हैं, महंगाई हो रही है, टैक्सेस के निजाम लग रहे हैं, पूरी दुनिया में हम लोग कट रहे हैं पिट रहे हैं। तो अल्लाह पाक का निजाम ये है, अल्लाह रसूल ने बला नाजिल करने से पहले बता दिया कि देखो तुम ये करोगे तो ये होगा, और जब तुम ये चीज छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी भलाई और खैरखाई करूंगा, सारी मुसीबतें दूर कर दूंगा। पर्चा आउट किया हुआ है, सबको पता है मुसलमानों को, उसके बावजूद नहीं छोड़ रहा है, इतनी ढिठाई आ चुकी है हमारे अंदर, इसका क्या मतलब है भाई। अल्लाह रिवर्स गियर नहीं लगाएंगे, अल्लाह की तरफ से प्रेशर और बढ़ेगा। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमा चुके हैं मेरी बातों को कोई नहीं बदल सकता। अगर हम चाहते हैं इंफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर हमारी जिंदगियों में सुकून आफियत आ जाए तो हमें गुनाहों को छोड़ना पड़ेगा। अगर हम इसी तरह से लगे रहे तो फिर उसके बाद ये होगा, अल्लाह की तरफ से डिग्रियां और बढ़ाई जाएंगी और बढ़ाई जाएंगी, परेशानियां हटेंगी नहीं, इनमें और इजाफा होगा। गैस आती थी कभी कमी हुई थी, अब घंटों से आ रही है। तो अल्लाह की नेमतों में कमी आ रही है, कमी। महंगाई कहां पहुंच चुकी है, टैक्सेस का निजाम कहां पहुंच चुका है, बीमारियां कितनी पहुंच चुकी हैं। आप ससलम इरशाद फरमा रहे हैं जिस कौम में हद से ज्यादा जब जिना हो जाता है, जब जिना आम हो जाता है, तो अल्लाह पाक उस कौम के ऊपर ऐसी ऐसी बीमारियां नाजिल करता है जिसके नाम उनके बाप दादाओं ने नहीं सुने होंगे। पता चला जिना की वजह से खौफनाक हौलनाक बीमारियां नाजिल होंगी। भाई बात कौन सा गुनाह, जिना, बदकारी, फहाशी और यानी बीमारियां क्यों, आज कितनी बीमारियां पैदा हो रही हैं, कितनी कसरत होती जा रही है, यंग यंग लड़कों को 20-25 साल के शुगर, ब्लड प्रेशर और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। कितने मेरे जानने वाले तो 30 और 35 साल के सीवियर हार्ट अटैक आया उनको। कभी हम और कह रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये सब किसी की सबकी समझ में आ रहा है, अल्लाह ने मोहर लगा दी दिलों पे, गुनाह छोड़ने पे तैयार नहीं है। सब ये कहते हैं वजीफा बता दें पर मसला हल हो जाए, भाई अल्लाह के नाम में असर है, कौन मना कर रहा है, लेकिन तकवा तो अख्तियार करो। अल्लाह ने फरमा दिया, किससे पारे की आदत आयत है ये, कि लोगों के गुनाहों के सबब मुसीबतें और बलाएं फैलाई जा रही है जमीनों में समंदरों में। अल्लाह कह रहे बलाएं मुसीबतें मैं फैला रहा हूँ, वजह क्या है, गुनाह काले करतूत और जमीनों में और बलाओं में। और अल्लाह फरमा रहे वजह क्या है, गुनाह गुनाहों की वजह से मैं फैला रहा हूँ। और आगे क्या फरमाए, ताकि तुमको तुम्हारे बाज माल का मवा चखाऊं, मजा चखाऊं। तंज कर रहे हैं अल्लाह पाक, तंज मजा चखाने वाले का मजा आ रहा है ना, तकलीफ मुब्तला कर दी अब तुमको, तंज कर रहे हैं अल्लाह पाक, मजा चखाऊं। वजह क्या है कि माँ के पेट से अब तक तुम्हें ऐश करा रहा हूँ, मजे तुम्हारे करा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत नहीं आती, तुम नफ्स और शैतान की ही पुजारी बने रहते हो, तो मजा चखो। और फिर अल्लाह क्या तसली दे रहे हैं कि तुम्हारी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मकसद कुछ और है इसके पीछे। मतलब ये है कि आगे अल्लाह फरमा रहे हैं कि ताकि तुमको तुम्हारे बाज अमाल का मजा चखाओ, ताकि तुम मेरी तरफ वापस लौट आओ, मेरी तरफ रुजू करो। क्या मतलब, दूर चले गए मुझसे, दूर चले गए, बहुत गुनाह करने लगे। गुनाह अल्लाह से दूर करता है, शैतान के करीब करता है, और तकवा शैतान को भगाता है, अल्लाह के करीब करता है। तो अल्लाह कह रहे हैं रुजू करो मेरी तरफ लौट आओ। अल्लाह की तरफ लौट आने का क्या मतलब है, तकवा अख्तियार करना, गुनाहों को छोड़ना, ये अल्लाह की तरफ लौट आना। तो फिर अल्लाह पाक का वादा है कि जब तुम मेरे ऐसा अमल करोगे तो मैं तुम्हारी परेशानियों को, गमों को, तकलीफों को दूर कर दूंगा। ये है तोड़, ये है मेरे, ये है सारे मसाइल का हल। अल्लाह हजरत जिगर मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैहि, बहुत बड़े ऑल इंडिया शायर गुजरे, पहले ने उनकी दाढ़ी थी ना कुछ, शराब बहुत पीते थे, और डॉक्टरों के बोर्ड ने कह दिया था कि भाई आपको शराब पीनी पड़, आपको मौत तक शराब पीनी पड़ेगी और आपको छोड़नी नहीं, अगर आप छोड़ेंगे तो आप मौत वापस हो जाएगी, आप एडिट हो चुके हैं, आदि हो चुके हैं, और आपकी जान बहुत कीमती है, आप ऑल इंडिया शायर हैं, बहुत गजब की इनकी आवाज़ थी। तो वो लेकिन हुआ क्या कि ये बीच में ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह के जरिए से हजरत मौलाना शबली थानवी रहमतुल्लाह के पास चले गए और बैत हो गए, और अल्लाह अल्लाह करने लगे, लेकिन शराब पीते थे, पुरानी आदत थी। फिर थानवी साहब रहमतुल्लाह से दुआ करे, अगर दुआ फरमा दें शराब छोड़ दूँ, हज करिए और खात्मा ईमान पर हो जाए। थानवी साहब ने हाथ उठा दिए दुआ के लिए, फिर शराब भी छोड़ दी, शराब छोड़ी, थोड़े बीमार हो गए। फिर डॉक्टर बैठे थे, उन्होंने कहा कि आपको शराब पीनी पड़ेगी और नहीं तो आप मर जाएंगे। उन्होंने कहा अच्छा, शराब पीता रहूँगा तो कब तक जीता रहूँगा। देखें बुजुर्गों की, अल्लाह वालों की सुबह से कैसा ईमान और यकीन अल्लाह ताला फरमाते। तो मेडिकल बोर्ड ने कहा कि अगर आप शराब पीते रहेंगे तो उम्मीद है आप कम से कम 4-5 साल तक आप जी जाएंगे। तो उन्होंने फरमाया कि 4-5 साल तक जी कर जो मरूंगा, जो जिंदा रह के जो मरूंगा, वो अल्लाह की लानत के साए में मरूंगा कि शराब पीते पीते मरूंगा। तो उससे बेहतर है जिगर अभी शराब छोड़ के तौबा करके अभी मर जाए, 6 महीने में अभी जो मरूंगा अल्लाह की रहमत के साए में मरूंगा। और फिर उन्होंने शराब छोड़ दी। बहुत लोग चीखे चिल्लाए, घर वालों ने भी कहा भाई शराब पिए मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे। नहीं, अरे भाई मौत जिंदगी अल्लाह के अख्तियार में, शराब छोड़ दी 20 साल जिंदा रहे, शराब छोड़ दी 20 साल जिंदा रहे। उसके बाद क्या दिखाया अल्लाह पाक ने, जो अल्लाह पर फिदा होता है अल्लाह दुनिया में भी उसके ऐश करा देते हैं। सही है भाई। तो डॉक्टरों का बोर्ड फेल हो गया, वो कह रहे थे आप 6 महीने में मर जाएंगे अगर आपने शराब छोड़ दी। तो यहाँ से क्या नतीजा निकला कि हजरत वाला फरमाते थे डॉक्टर मायूस भी कर देगा, तो डॉक्टर ने मायूस किया, अल्लाह ने तो मायूस नहीं किया। अल्लाह को राजी कर लो, तकवा अख्तियार कर लो, पूरी रिपोर्टें बदल देंगे तुम्हारी। कितने ऐसे ऐसे लोग हमने देखे कि खतरनाक कैंसर डायग्नोज हुआ, क्या क्या हुआ, तौबा इस्तिगफार की, तौबा अख्तियार की और रोए, अल्लाह ने कुछ वसीले बनाए, कुछ लोग मिले, दुआएं हुआ की, उसके बाद रिपोर्ट कराई तो दिल की रिपोर्ट आ रही है, खत्म, सब खत्म। अभी भी मेडिकल दिखा रहा है अल्लाह पाक, अभी भी मौजूदात दिखा रहा है। अल्लाह का वादा है कुरान पाक से, वो मई तकिलाज लो मखरजा, जो शख्स तकवा अख्तियार करेगा मुसीबत से निकाल देगा। लेकिन मसला ये मुसीबत को समझे, सबसे बड़ी मुसीबत गुनाह है, गुनाह। एक बुजुर्ग थे, किसी परेशानी और मुसीबत में मुब्तला हो गए, तो लोग आए उनका हालचाल पूछने, उनका बड़ा अफसोस हुआ आपको बड़ी मुसीबत आ गई। उन्होंने कहा मुझे कोई अफसोस नहीं है और शुक्र अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसीबत में मुब्तला हुआ हूँ किसी, लेकिन किसी माफियत में मुब्तला नहीं हुआ। माफियत यानी गुनाह, मुसीबत में मुब्तला हूँ, गुनाह में मुब्तला नहीं हूँ। बड़ी गहरी बात फरमा गए। क्या मतलब कि गुनाह में मुब्तला रहना ये मुसीबतों से बड़ा मामला है, खतरनाक। हम लोग जिन भूत से डरते हैं, जादू से डरते हैं, बदनजर से डरते हैं, पत्नी काली बिल्ली रफ्ता काट जाए उससे डर जाते हैं, मखलूक से डरते हैं, आमिलों से डरते हैं, जादूगरों से डरते हैं, अल्लाह से नहीं डरते। अल्लाह से डरने का क्या दलील है, गुनाह ना करना, ये अल्लाह का डर रखना दिल में। ये भी मजमून आ चुका है उलमा कराने की किताबों में हवालों के साथ लिखा है, जो अल्लाह से डरता है तकवा अख्तियार करता है, कायनात की हर शय उससे डरती है। ये बड़ा गहरा जुमला है, जो अल्लाह से डरता है तकवा, जो मुत्तकी इंसान होता है अल्लाह से डरता है, दुनिया उससे डरेगी, दुनिया उससे डरती है। और जो अल्लाह से नहीं डरता, यानी अल्लाह की बातों को अहमियत नहीं देता, आदतन हराम कामों में गुनाहों में लगा रहता है, जो अल्लाह से नहीं डरता हर शय उसको डराएगी, फिर हर शय। काली बिल्ली भी रफ्ता काट जाएगी, थर थर कांपेगा, यार आज कोई मसला शायद मेरे साथ होने वाला है, मैंने दो दफा आज काला बिल्ला मेरा रफ्ता काट गई है। ये अल्लाह पाक उसको फिर फंसाते हैं उल्टे सीधे वसवसों में, उल्टे सीधे चक्करों में, क्योंकि जालिम अल्लाह से नहीं डरता। इसलिए अल्लाह से ना डरने की वजह से अब उसको हर शय डराएगी, हर शय डराएगी उस पादाश में, उस गुनाह में, उस जुर्म की वजह से। तो भाई अल्लाह का खौफ दिल में पैदा करें हम लोग, तकवा अख्तियार करें। तो बात शुरू हुई थी तौबा इस्तिगफार से, ये तौबा इस्तिगफार जो है उसको लाजिम पकड़ लें गुनाहों से, किसी भी गुनाह में, किसी भी गुनाह कबीरा में आदतन मुब्तला ना रहे, नहीं तो अल्लाह का एक निज़ाम हरकत में आएगा और फिर तकलीफ उठानी पड़ जाएगी। तो उस वक्त के आने से पहले पहले तौबा कर लें, गुनाहों को छोड़ने की कोशिश करें। गुनाह कैसे छूटेगा, कोशिश के बावजूद नहीं छूट रहा, तो भाई कोई अगर ताल्लुक किसी से है या नहीं है, या कोई अल्लाह वाला ढूंढ ले किसी का, कोई अल्लाह वाला अगर नहीं है तो भाई उनसे जाके इस्लाह करवाएं। बैत होना मसनून अमल है, सुन्नत है, बहुत नूर आला नूर सुन्नत है, लेकिन इस्लाही ताल्लुक कायम करना कि किसी अल्लाह वाले से इस नियत के साथ कि गुनाह मेरी जिंदगी से निकल जाए। ये नमाज रोजे की तरह फर्ज है, ये अल्लाह पूछेगा, फर्ज है फर्ज इस्लाही ताल्लुक कायम करना, इस नियत के साथ गुनाह निकल जाए तो भाई फिर नहीं तो फिर अल्लाह का तख्मीनी निज़ाम हरकत में आ जाएगा। इसकी तरफ फिक्र करें। अगर आफियत से रहना है, चैन से रहना है, सुकून से रहना है, हम और हमारे अहलो याल बलाओं से, परेशानियों से, तकलीफों से बचे रहें तो तकवा अख्तियार करें। और अगर कभी तकवा टूट जाए तो तौबा करके तकवे को दोबारा बहाल कर लें। हज़रत फरमाते थे मुत्तकी रहना इतना आसान है जैसे बावजू रहना। हर वक्त कोई बावजू रह सकता है? कोई नहीं रह सकता। वजू टूट गया फिर वजू कर लें, तकवा टूट गया फिर तौबा कर लें। तो ऐसा आदमी भी उसका दायरा है तकवा की हदूद से अखराज नहीं है, ऐसा शख्स भी मुत्तकी है, क्योंकि ये गुनाहों पर इसरार करने वाला नहीं है, फौरन तौबा करता है, फौरन तौबा करता है, तो भी मजे से रहेगा वो। अब इससे आगे कोई नुस्खा होगा या बहुत कोई मुश्किल भारी चीज बता रहा हूं, लेकिन अब किसी का दिल ही ना चाहे तो क्या करें, किसी का दिल ना, बहुत से लोग इसलिए तौबा नहीं करते, यार अगर तौबा कर ली तो फंस जाऊंगा, अगले जो आराम मजे जो अगले दिन मुझे करना है वो तो ब्रेक लग जाएगा सब पे। जैसे अल्लाह ताला मिसाल देते थे, बहुत से लोग बदनजरी के आदी होते हैं, बाइक पे या गाड़ी में जा रहे होते हैं, तो शुरू में खवातीन स्टॉप पे खड़ी होती हैं, खूब बदनजरी करते हैं, दिल में तौबा का ख्याल आता है, तो कहते हैं छोड़ो यार टावर पहुंच के खट्टी एक दफा कर लूंगा, अभी बीच में जो सामान आ रहा है और भी कोई चीजें आएंगी ना, अगर उसको भी तो देख लूं तो खट्टी कर लूंगा। अरे भाई वहां तक पहुंचोगे, पहुंचोगे यकीन है, तो दावा कर सकता है टावर तक पहुंच जाऊंगा, भाई बीच में अल्लाह ना करे बदनजरी करते हुए मौत आ गई तो क्या होगा। एक ऑफिस में, हमारे ऑफिस में एक साहब थे बहुत बदनजरी के आदी थे, ये मेरा मुशाहदे का वाक्य बताऊं तो, और इतनी पुरानी गंदी लत लगी हुई थी बदनजरी का भी एक तरीका होता है, ये बाइक के ऊपर भी बैठ के चलाते थे ये साहब जिनका बता रहा हूँ, तो वो बदनजरी करते रहते थे। तो कोई लड़की कोई जा रही थी तो बाइक चला रहे हैं, वो जरा साइड में थी तो गर्दन घुमा के देख रहे थे, सामने से टैंकर आया उड़ा दिया, तो क्या हुआ कि फिर वो बिस्तर पे पड़ गया, वो मोरा टूट गया कमर का, बिस्तर में पेशाब पखाना होता रहा, तो पता नहीं क्या हुआ। तो ये अल्लाह का अजाब, वही बात कि एक वक्त होता है, हम चूंकि पकड़ नहीं आती, ढील मिलती रहती है, समझते हैं शायद ऐसी रहूंगा मैं तो फिटफाट, अल्लाह तो पत्नी शायद है भी या नहीं, नाउज बिल्ला बाब लोग तो ये समझते हैं ये पता नहीं अल्लाह है भी या नहीं। अरे भाई वो माँ 70 माँ से प्यार करने वाला है, वो रहमत की वजह से कुछ नहीं बोल रहा, देख सब रहा है, अलम या आलम भी अल्लाह यारा, अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमा रहे हैं, अलम या आलम है मेरे बंदे तू क्या नहीं जानता, अलम या आलम भी अल्लाह यारा कि मैं हर वक्त तुझे देख रहा हूँ, सीसीटीवी कैमरा क्या भेजता है अल्लाह की नजर के आगे, अल्लाह कह रहे हैं मेरे बंदे हर वक्त तू मेरी निगाह में है। दूसरी जगह फरमा रहे हैं वह हुआ माकुम अइना मा कुंतुम, ए मेरे बंदे तू जहां भी है मैं तेरे साथ हूँ, वह माँ को मैं तेरे साथ हूँ, तू जहां भी है। फरिश्ते अलग बैठे हैं कंधे पे करामन काते भी, फौरन हमारी अच्छाइयां बुराइयां दिखते रहते हैं, हम समझते हैं हम तो आजाद हैं, हमें कोई ना देख रहा है ना कोई सुन रहा है ना कुछ कुछ है वो कोई मामला, बस ऐसी जिंदगी गुजर जाएगी मजे से, यही रोटी पानी मिलता रहेगा, इसी तरह मैं चैन से जीता रहूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता, फिर अल्लाह की तरफ से नेमतों में कमी आती है, फिर हमारा जिंदगी के ऊपर अल्लाह पाक ग्रहों की वजह से जलजला तारी कर देते हैं, जलजले आते हैं फिर जिंदगी के ऊपर। तो खुदा से गुनाह करना, आदतन गुनाहों में मशगूल रहना, खुदा से टक्कर लेना है, खुदा से खुदा को ललकारना है, गुनाहों को ना छोड़ना, डरना चाहिए अल्लाह के अज़ाब से। अल्लाह, तो तौबा इस्तग़फ़ार करते रहे। अब एक बात याद है जो रह गई थी शुरू में, अब बाज लोग के दिल में बात आती है, जब बार बार तौबा इस्तग़फ़ार कर रहा हूँ मैं गुनाह छोड़ने की, नहीं अल्लाह से माफ़ी भी मांग रहा हूँ, लेकिन मैं फिर थोड़ी देर में अगले दिन वही गुनाह करता हूँ तो फ़ायदा क्या? तो भाई फ़ायदा ये है, मशायख फरमाते हैं जब बार बार तुम ये अमल करते रहोगे, जो नफ्से हमारा कमज़ोर पड़ जाता है, दो तीन महीने तक लग के ये अमल करते रहो, फिर तीन महीने के बाद बात करना, जो तुम्हारी गुनाह किसी गुनाह करने की शिद्दत में जो एक जुनूनी अंदाज था, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ बात को, दो तीन महीने लग के इसको आदत डाल दो अपनी, फिर तीन महीने के बाद अपने नफ्स हमारा को चेक करना, नफ्स में कितना पिकअप उठता है उस गुनाह को करने में, 70% कमी आ जाएगी इंशाल्लाह। हल्का सा एक क्या कहना चाहिए, पिकअप तो सब भी उठेगा, मौत तक कभी ये खत्म नहीं होता, ये गुनाह के तकाजे जो होते हैं, लेकिन इसकी शिद्दत और जो जरूरी जो अंदाज होता है, जो आउट ऑफ कंट्रोल होता है, तो बार बार तौबा की बरकत से 70% 80% तक अल्लाह पाक बंदे को कंट्रोल अता फरमा देते हैं, नफ्स हमारा ढीला पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है, ये राज है। और आखिर में हज़रत पाला रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते थे कि जो भी ये पांच अमाल कर लेगा इंशाल्लाह वलीउल्लाह बनेगा, मौत भी नहीं आएगी उसको जब तक अल्लाह पाक उसको अपनी विलायत उज़्मा आला नसीब नहीं फरमाएगा। वलीउल्लाह बनाने वाले पांच अमाल की छोटा किताबचा भी मिलता है, इसकी रोशनी में हम देखें कि हमारे इन पांचों अमाल में से कितने अमाल हमारे पूरे हुए, और ये नफली चीज़ें नहीं है, पांचों अमाल फ़राइज़ और वाजिबात से इनका ताल्लुक है। तो पता ये चला कि कुदरत जो है हम सबको वलीउल्लाह देखना चाहती है, तो पहले तो कुरान पाक तजवीद के साथ पढ़ने का एहतमाम करें, दो ढाई महीने की मेहनत है, आज हम पता नहीं कौन कौन सी तालीम हासिल करते हैं जो कब्र तक साथ नहीं जाने वाली, सिर्फ दो पैसे दिला देगी वो तालीम, भाई मना नहीं है वो भी करो, लेकिन कुरान पाक की कब्र में साथ जाएगा, इंसानी शक्ल में होगा, और मुनकर नकीर से कहेगा कि अगर नरमी से मोहब्बत से इनसे बात करना है डरे नहीं मेरे, और जो भी तुम्हें सवाल जवाब करना हो मेरी कस्टडी में करो, मैं इनको अकेला छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो कुरान पाक होता है वो, कब्र के साथ उतर के जाएगा, माँ बाप बहन भाई बीवी बच्चा कोई प्यारा हमें कब्र में साथ जाने को नहीं है हमारे, वो कुरान पाक जाता है, नेक अमाल और कुरान पाक, और इन तमाम अमाल का हेड होता है कुरान पाक। तो कुरान पाक पढ़ना है लेकिन तजवीद के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ा तमाम तारीफ़ है लगी नहीं, हा की आवाज अगर हमने हलफ से निकाली तारीफ, अगर दो चश्मी ऐसे निकाली अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो उसका मतलब हो जाएगा तमाम ऐब और बुराई अल्लाह की नहीं, नऊज़ बिल्लाह, कहाँ तारीफ है कहाँ बुराइयों। कल्ब माने दिल, दो नुक्ते वाला खौफ, हलफ से वाला निकल, खड़े काफ से पढ़ा काफ, कल्ब कल्ब माने कुत्ता, कहाँ दिल कहाँ कुत्ता, तो मतलब कुछ के कुछ बदल जाते हैं। तो दो ढाई महीने की मेहनत है, कोई इतना लंबा चौड़ा मामला नहीं है, फिर मज़ा भी आएगा कुरान पाक पढ़ने में जब आदमी की तजवीद दुरुस्त हो जाती है। और एक मुट्ठी दाढ़ी तीनों तरफ से रखना वाजिब है, दूसरा मल है, एक मुट्ठी दाढ़ी तीनों तरफ से रखना वाजिब है, खाली सुन्नत नहीं है, फर्ज के दर्जे में चारों इमामों का इजमा है कि एक मुट्ठी दाढ़ी तीनों तरफ से रखना वाजिब है, और चावल के दाने के बराबर भी अगर एक मुट्ठी से दाढ़ी कम है तो ऐसी दाढ़ी का रखना और दाढ़ी का मुड़ाना हराम है, और हराम काम करने वाला कभी अल्लाह का वली दोस्त नहीं हो सकता। और दाढ़ी मुंडे में लोगों को देख के, और बड़ी बड़ी मूछें जिनकी थी, तो एक बादशाह के सफ़ीर रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देख के नागवारी से मुंह फेर लिया और इरशाद फरमाया हलाक और बर्बाद हो, ये तुमने क्या शक्लें बनाई हुई कि तुम मूछों को बढ़ाते हो और दाढ़ियों को मुंडाते हो। उन्होंने कहा कि सफ़ीरों ने कहा हमारे बादशाह ने ऐसा हुक्म दिया है हमें शक्लें बनाने का, फिर आपने इरशाद फरमाया लेकिन मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि दाढ़ियों को बढ़ाओ और मूछों को कतरवाओ। हलाकत की बद्दुआ है दाढ़ी मुंडने के ऊपर, लोग कहते हैं सुन्नत दी तो है छोड़ दी तो क्या हुआ। तो सोच डरना चाहिए, रसूल अल्लाह की दुआ जिन अमाल पर आई और जिन बदअमालियों पर बददुआएं आप सुन ने दी हैं वो कयामत तक के लिए वैलिड हैं हर मुसलमान के ऊपर जब तक वो जिंदा रहेगा। तो जो लोग मुड़ी दाढ़ियाँ मुड़ाते हैं भाई वो तौबा करें, रसूल अल्लाह की बददुआ की लपेट में चल रहे हैं तो फिर कैसे किसी पीर अल्लाह के वली की या किसी की दुआ काम आएगी, क्योंकि रसूल अल्लाह का दर्जे का जो दर्जा वो तो इमामुल अंबिया है। तो रसूल अल्लाह बददुआ दें और अल्लाह का वली दुआ करे तो किसकी दुआ ज़्यादा मौसर होगी, सोचने वाली बात है। तो अल्लाह वाले की बस ये होता है कि जो लोग इनकी सोबत में जाते हैं उनकी बरकत से गुनाहों से तौबा लोग कर लेते हैं, उनको हिदायत दे देते हैं और अमाल पे जिंदगी आ जाती है, तो फिर वो रसूल अल्लाह की बद्दुआओं के जो अमाल है उससे वो बाहर आ जाते हैं। तो दाढ़ी रख लें। और नंबर तीन, तीसरा मल जो है माँ असल मिनल काबैनी मिनल ज्वारे के नार, ऊपर से आने वाले लिबास जिससे टखने छुपेंगे जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। तो मर्दों के लिए दो सूरतों में टखने खोल के रखना वाजिब है, जब चल रहे हो और जब खड़े हों, खड़े हों चल रहे हो, बैठे लेटे तो भले छुप जाए कोई मसला नहीं है, नहीं अगर इस तरह के तो जहन्नम में जलने की वाजिब है। और भाई खवातीन जो है वो कुरान पाक तो खवातीन की नहीं भी है, खवातीन जो है वो दाढ़ी और टखनों से ऊपर पैंचे जो मर्दों के जो मामला हैं इसकी जगह दो अमल कर लें तो वो भी वलीउल्लाह बन जाएंगी। एक तो शरी पर्दे का अहतमाम करें और अपने शौहर के साथ सही मामला रखें और उनसे निभा सही तरह से करें, उनकी फर्मबरदारी अख्तियार करें। और चौथा जो अमल है नज़रों की हिफाजत का, ये भी मर्द और ख़वातीन दोनों की नहीं है। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, कुल्लिल मोमिनीन यग़ुज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मोमिन मर्दों से कह दीजिए कि अपनी बाल निगाहों की हिफाजत करें और शर्मगाहों की हिफाजत करें, और आप मोमिन औरतों से भी कह दीजिए कि वो भी अपनी बाप निगाहों की हिफाजत करें और शर्मगाहों की हिफाजत करें। यानी अल्लाह पाक मर्दों को अलग हुक्म दे रहा है, ख़वातीन को अलग हुक्म दे रहा है नज़रों की हिफाजत का। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाए हदीस शरीफ में, ना दे रहा वो मंजूर है लही, अल्लाह पाक लानत फरमा जो बदनजरी करे। कहते ना बदनजरी है क्या, नामहरम को देखने से रसूल लगी फिर लानत की बद्दू आ रही है। लानत का क्या मतलब होता है, अल्लाह इस बंदे या बंदी को अपनी रहमत से दूर कर दे, बहुत अने रहमा रहमत का लानत का मतलब होता है अल्लाह इसको अपनी रहमत से दूर कर दे। तो रसूल अल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लाह पाक लानत नाज़िरा मंज़ूर अलैहि, अल्लाह पाक लानत फरमा जो बदनज़री करे उस पर भी लानत फरमा, और उस पर भी लानत फरमा जो अपने आप को बदनज़री के लिए पेश करे। वो ख़वातीन जो बेचारी शरी पर्दा नहीं करती और ना महारिम लोगों के मर्दों के सामने आती रहती हैं तो वो भी लानत की बदों में आ रही हैं, अल्लाह की रहमत के साए से दूर हो रहे हैं सब। तो फिर क्या मसाइल हल होंगे, दिल पर वहशत तारी होगी, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन पैदा होगा, वहशत पैदा होगी, घबराहट होगी, अल्लाह रसूल की बातों में दिल नहीं लगेगा। वजह क्या है कि वो रसूल अल्लाह की लानत की बद्दुआ चल रही है। तकवा अख्तियार करेगा, नजर बचाएगा, तकलीफ दिल को होगी लेकिन सुकून मिलेगा दो तीन दिन के बाद, पल में ठंडक महसूस होगी, अल्लाह की मोहब्बत में आंसू आएंगे, एक ही वो गरीब एक कैफियत होगी। फिर वो होता है जिसको आदमी जबान से बता नहीं सकता। और पांचवा जो अमल है भाई, यालम खयानत अलायुमी आयुनी गुमा तो फिर सदूर, अल्लाह फरमा रहे हैं कि आंखों की खयानत को मैं खूब अच्छी तरह से देख रहा हूँ, या जानता हूँ, यालम मैं जानता हूँ तुम्हारी आंखों की खयानत को, यानी तुम बदनजरी करते हो, गुमा तो फिर सदूर और तुम्हारे सीनों के राहों से भी वाकिफ हूँ, ये बदनजरी करते हो यानी बाद में फिर गंदे ख्याल छुपाते हो। मतलब क्या कि दिल को पाक साफ रखना ये बैतुल्लाह है, तो अल्लाह का घर नस्बत माल्ला ताल्लुक माल्ला और अल्लाह की विलायत का नूर कल्ब के अंदर पहले आता है फिर जिसम में आगे सप्लाई होता है। दिल को पाक साफ रखना है अल्लाह के लिए, यानी गंदे ख्यालात इसमें लेकर ना है, शैतान डालता रहता है लेकिन जानबूझ के दिल में खुद से गंदे ख्यालात का लाना जमाना सही नहीं है। कभी इस तरह के गंदे वसवसे आए तो आदमी किताब पढ़ ले या वजू कर ले या अपने जहन को किसी और चाइस काम में लगा ले तो थोड़ी देर में कैफियत से उसका इखराज हो जाएगा इंशाल्लाह। और इन पाँचों अमाल की तौफीक किसी भी अल्लाह वाले से जहाँ मुनासबत हो वहाँ ताल्लुक कायम कर ले तो इंशाल्लाह थोड़े अरसे में इन पाँचों माल की तौफीक हो जाएगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद या रब्बिल करीम या अरहमर रहीमीन। जो कुछ भी बोला गया सुना गया अल्लाह उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, कह दे सुनने में जो कमी बेशी गलती हो गई है जो हुई है वो पेशान रहमत से उसको बख्श दे, माफ़ फरमा दे, हमारा मिल बैठना जो तेरी रजा तेरी खुशी की नहीं है या अल्लाह उसको कबूल करते हुए हम सब की कामिल मग़फ़रत फरमा, हम सबको कामिल तौबा इस्तग़फ़ार करने की तौफीक नसीब फरमा, आदतन हर गुनाह कबीरा में मशगूल रहने से हम सबको बचा ले, प्यार मोहब्बत से अल्लाह पाक हमारी नरमी के साथ अल्लाह पाक हमारी इस्लाह फरमा दे, या अल्लाह हमारी इस्लाह के लिए हमारे लिए सख्त फैसले हमारे लिए मुकद्दर ना फरमा, या अल्लाह तू रहमत बरसाने पर भी कादिर है। अल्लाह तूने खुद ये बात कहलवाई है रसूल अल्लाह सल्लम के ज़रिए से कि मेरी रहमत और मेरे गज़ब में दौड़ हुई तो मेरी रहमत आगे निकल गई, या अल्लाह तूने जब खुद इस बात का ऐलान फरमा दिए तो अल्लाह अपने गज़ब के ऊपर अल्लाह पाक अपनी रहमत को गालिब फरमा दे, या अल्लाह हमें प्यार मोहब्बत से हमारी इस्लाह फरमा दे, हर गुनाह कबीरा से हमारी पावत फरमा दे, या अल्लाह हम सब का तस्किया कर दे, अल्लाह पाक नरमी के साथ दुनिया में जीते जी मरने से पहले और हम सब का खात्मा ईमान पर मुकद्दर फरमा, या अल्लाह हाजरीन मजलिस में से जिसके दिल में जो भी जायज़ हाजात हैं अल्लाह तू जानने वाला है हम सब की जायज़ हाजात को पूरा फरमा दे, जो भी यहाँ आए महरूम ना जाए, दुनिया भी बना दे, आखरत भी बना दे, या अल्लाह یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کو شفا کلی نصیب فرما، جتنے بھی مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جتنے بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ. اہلیہ محسن صاحب بہت بیمار ہیں، ان کے گردے گردوں میں کافی خرابیاں ہو گئی ہیں اور ڈائلسس پہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اور دل کے امراض میں اتر ہیں. دعا کرے اللہ پاک ان کو مکمل شفا کلی نصیب فرما دے، مرض کا نام و نشان مٹا دے. یا رب الرحمین، میرے والد صاحب کی اور میرے مرشدین کی اور ہمارے جملہ مرومین کی، کل مومنین مومنات کی، کل جنات کی، اور ایک میرے عزیز ہیں زاہد صاحب، اللہ پاک ان کی ان کا بھی انتقال ابھی ہوا ہے کل، اللہ ان سب کی کامل مغفرت فرمائے، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے. یا اللہ بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی جان و مال عزت آپ لوگوں کی حفاظت فرما. یا اللہ یہودیوں کو اور اس کے مددگاروں کو جلد از جلد تباہ و برباد کر دے، صفحہ ہستی سے مٹا دے، عبرت کا نشان بنا دے. اللہ پوری امت مسلمہ کی جان و مال عزت آپ لوگوں کی حفاظت فرما، عافیت عافیت عطا فرما. یا ارحم الرحیم، مختصر کے وقت میں جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، اور جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا اللہ وہ بھی عطا فرما دے. سب سے بڑھ کے تجھ سے تجھ کو مانگتے ہیں، جسے تو نہ ملا اسے کچھ نہ ملا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم صل على محمد وعلى آله.